सबका स्वागत है प्रेम सरोवर पे। तो यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आप में से कितने लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ बैठने में, हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं हो रही है तो हम आराम से बैठ सकते हैं। हाँ कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्ट्रोवर्शियल। तो कितने लोगों को यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है, हरी बोल करके बताएंगे।
हरी बोल।
कई लोगों ने इस बार भी हाथ नहीं खड़ा किया, फिर कॉन्ट्रोवर्शियल था क्या ये? तो ये फोन बज रहा है किसी का, बंद कर दीजिए।
काट दो।
काटना आता है आपको फोन? फेंक दो उठा के सर, ये तो आता होगा। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, आज हम सुबह बरसाना धाम में थे, बरसाना श्रीमती राधा रानी का धाम है, और आज हम गए थे नंदगांव। नंदगांव में हमने टेर कदम और आशीष्वर महादेव जी के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। जो आज हमने प्रसाद ग्रहण किया है ये साधारण प्रसाद नहीं है। मैं भक्तों को बता रहा था जो हमारे बस में थे, मतलब हमारे बस में तो नहीं है, सब तो भगवान के बस में है, पर जो हमारे बस में थे रोडवेज वाली बस में, तो ट्रांसपोर्ट बस में थे भक्त, उनको मैं बता रहा था कि जब बाबा नंद के घर में कृष्ण आए तो उनका दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता आते थे, यहाँ तक कि शिव जी भी भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं। कई लोग जो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं उनको लगता है 16 सोमवार रख लो और हरे कृष्ण जप लो एक ही मतलब है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान शिव विष्णु हो या ब्रह्मा हो, सभी भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। और श्रीमती राधा रानी ऐसी हैं जिनको कृष्ण भी जिनकी उपासना करते हैं, इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी को सर्वोच्च मानते हैं, सबसे ऊंचा। भक्ति सिद्धांत महाराज पूछा करते थे अपने भक्तों से, हमारे हरे कृष्ण करने में और संसार के हरे कृष्ण जपने में क्या भेद है? जैसे आज हम सुबह बरसाना मंदिर गए तो वहां पर भी हरे कृष्ण जप रहे थे लोग, उनके हरे कृष्ण जपने में हमारे हरे कृष्ण जपने में क्या भेद है? कि हरे कृष्ण जो गौड़ीय वैष्णव जपता है वो इसलिए जपता है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का स्वरूप लेके चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण जपो, इसलिए हम जपते हैं। क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती इसलिए हम कृष्ण को भी भगवान मानते हैं, परंतु हमारे सर्वोच्च भगवान कौन है? इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों में और दूसरे लोगों में भेद है। दूसरे लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को सखा मानते हैं, पति मानते हैं, अलग अलग रसों में माधुर वात्सल्य इन सभी रसों में भगवान से आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसी यहाँ पर बरसाना में 28 से अधिक ऐसे स्थान है जहाँ का दर्शन करने योग्य है। हमने कितना किया आज?
हमने
तीन स्थान। कौन कौन से? पहले बरसाना में टेर कदम। बरसाना में क्या किया था? श्रीमती राधा रानी का मंदिर, क्या नाम था उसका? लाडली लाल मंदिर। उसके बाद कहाँ गए थे? मोर कुटीर। फिर कहाँ गए? पीली पोखर, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, तो पीली पोखर थोड़ा सा दूर था, लेकिन सब लोग कह रहे थे पीली पोखर प्रभु जी मजा आ गया, है ना। लेकिन प्रेम सरोवर आकर क्या कहना है आपका?
हरी हरी बोल।
पहले बोले हरी बोल, अभी बोले हरी हरी बोल, है ना। तो जो लोग नहीं गए उनका कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रेम सरोवर देखा है। तो इस तरह से बरसाना, और बरसाना में 28 से अधिक स्थान और नंदगांव में 34 से अधिक स्थान है जहां पर दर्शन करने योग्य है, जिसमें प्रेम सरोवर, टेर कदम, आशेश्वर महादेव, चरण पहाड़ी, ललिता कुंड, यशोदा कुंड, वृंदा कुंड, पावन सरोवर, तो ऐसे अनेकों स्थान है। यशोदा मैया का वो मटका आज भी रखा है जिसमें वो कृष्ण के लिए छाछ बनाती थी, तो वो मटका इतना बड़ा है कि हम 6-7 लोग बैठ जाएंगे उसके अंदर, तो आज भी है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉक करके जा सकते हैं। पर धूप इतनी है, सब लोग मुझे बोल रहे हैं हमें ट्रैकिंग पे लेके आए हैं प्रभु जी, तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा दूर चलाया नहीं, वहीं जा रहे हैं जहाँ बस से जा सकते हैं। वरना अगर आप नवंबर में आए तो हम परिक्रमा करें अगर बरसाना की, तो 4 से 6 किलोमीटर के बीच में, 4 से 5 किलोमीटर के बीच में परिक्रमा है, जिसको 1.5 घंटे में किया जा सकता है सभी स्थानों को। और नंदगांव की भी ऐसे ही तकरीबन 3-4 घंटे में, 2 घंटे में हो सकती है परिक्रमा। कथा करके चलेंगे तो 4-5 घंटे, या 2 दिन मान लें, 1 दिन बरसाना परिक्रमा, 1 दिन नंदगांव परिक्रमा। तो ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर स्थान है, यहाँ पर राधा रानी की महिमा अनेक है। कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धारी। राधा और कृष्ण क्या है? दोनों एक आत्मा है, दुह देही धारी। अभी लोग पूछते रहते हैं अच्छा प्रभु जी आपसे एक गुहितम प्रश्न पूछना है, राधा कृष्ण का कभी विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था? ये गुहितम प्रश्न नहीं है, ये फालतू प्रश्न है। गुहितम तो वो होता है जो बड़ा समझदारी का प्रश्न हो, फालतू प्रश्न। राधा और कृष्ण का विवाह तो तब होगा जब दोनों अलग होंगे, तो दो अलग लोगों का विवाह होता है अलग अलग मूड के, लेकिन राधा और कृष्ण तो है ही एक। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, दो देहधारी हैं। कृष्ण के शरीर से जो उनकी स्त्री रूपा शक्ति निकलती है, हलादनी शक्ति, उसे श्रीमती राधा कहते हैं। अब एक बल्ब है, टंगस्टन वायर उसके अंदर लगा हुआ है, बल्ब को ऊपर के कांच को तोड़ दो और बोलो टंगस्टन वायर यही बल्ब है, तो ये बल्ब है, रोशनी होगी। अच्छा ये बोले कि कांच ही कांच है लेकिन अंदर वायर नहीं है, तो क्या बल्ब है? ऐसे ही शक्तिमान कवरिंग है और शक्ति उसकी राधा रानी है। तो राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते, इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेरा प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि ये दोनों चीजों में कोई भेद नहीं है, राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्ति। शक्ति और शक्तिमान अलग हो सकते हैं? मैं बोलूं डॉक्टर साहब आपकी एनर्जी मैंने आपसे निकाल ली है, आप चल के दिखाइए, ऐसा आदमी चल नहीं पाता, कहता है एनर्जी लॉस, जब एनर्जी कम हो जाती है तो चल नहीं पाता, अगर एनर्जी गायब हो जाए तो चल पाएगा। तो इसलिए राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं है, दुई वस्तु लेकिन एक ही है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से भौतिक संसार के लोग काम वासना से भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को जोड़ देते हैं, ये जोड़ना ठीक नहीं है। चेतन चरितामृत कहते हैं काम प्रेम दोहकार विभिन्ना लक्षण, लोह आर हेम पाछे स्वरूप विलक्षण। लोह और हेम, लोह क्या होता है? लोहा। और हेम क्या होता है? हेम नहीं, हिम होता है बर्फ, हेम क्या होता है? घोड़ा, हथौड़ा, हेम। अरे अंग्रेजी बोल रहे हैं क्या? हैमर। हेम क्या होता है? हाँ गोल्ड, बिल्कुल सही है। तो लोह है लोहा, हेम है सोना, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों मेटल कहलाते हैं, एक आयरन मेटल एक गोल्ड मेटल। आयरन का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या है आयरन का? Fe। और गोल्ड का? Au। तो दोनों अलग अलग रूप में है दोनों। काम प्रेम दोहकार विभिन्न लक्षण, लोह और एम पाछे स्वरूप विलक्षण। ये स्वरूप ही इसका अलग अलग है, लेकिन आप लोहे से सोने का काम नहीं ले सकते, सोने से लोहे का काम नहीं ले सकते, लेकिन भौतिक संसार के लोग आजकल सोने के गहने बनाने की जगह लोहे के गहने बना के पहनते हैं और कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। इसी तरह से कृष्ण भगवान की जो प्रेममय लीला है उनको काम वासना से जोड़ देते हैं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लीला को जो मैं बताने वाला हूँ प्रेम सरोवर की, इसके लिए पहले प्रेम तो पता हो क्या है, तब हम लीला समझेंगे। अगर आप किसी और के साथ आएंगे जो शास्त्र प्रमाण नहीं जानते हैं, वृंदावन के रहने वाले भी हो, वो आएंगे आपको कहेंगे राधा रानी बैठी थी, कृष्ण बैठे थे, प्रेम हुआ, ऐसे हुआ, आंसू निकले और प्रेम सरोवर बन गया, आपका हाँ हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन शास्त्र क्या समझा आप? पहले शास्त्र समझ के ये समझे राधा कृष्ण कितना दिव्य चरित्र है, ये कोई साधारण हमारे जैसे नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप। राधा और कृष्ण बहुत ही उत्तम कैटेगरी भगवान, पूर्ण शक्तिमान, और उनकी पूर्ण शक्ति की चर्चा होने वाली है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि संसार में महालक्ष्मी, राजलक्ष्मी, मृत्यु लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, कन्या लक्ष्मी, ये जितनी भी लक्ष्मी है इन सबकी उत्पत्ति का कारण है श्रीमती राधा रानी। हम तो जीवन में एक लक्ष्मी चाहते हैं, है ना, दीपावली में पूजन करते हैं लक्ष्मी मैया की, लेकिन राधा रानी से महालक्ष्मी जो कि नारायण की सेवा करती हैं, राजलक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, और मृत्यु लक्ष्मी जो कि इस संसार में हमारे घर के अंदर रहने वाली आपकी पत्नी है पुरुष की, वो भी लक्ष्मी होती है ना, आदमी कहता है हमारी लक्ष्मी जी की कृपा है, लेकिन ये लक्ष्मी है तीसरे लेवल की, मृत्यु, मृत्यु लोक की मृत्यु लक्ष्मी, इससे ऊपर है राजलक्ष्मी, उसके ऊपर है महालक्ष्मी, और इसके ऊपर कौन है राधा रानी। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अरे लक्ष्मी जी का स्वरूप, लक्ष्मी जी से राधा रानी आई थी, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। विष्णु जी से कृष्ण आए थे, ये अपराध हो जाएगा। कृष्ण उद्गम स्थान है हर चीज का, इस संसार के सृष्टि में चर अचर दिखने वाली हर वस्तु किससे निकलती है, इसलिए कृष्ण कॉन्शियस होने का मतलब प्रभुपाद बोलते थे व्हेन यू कैन सी कृष्ण इन ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इवन इन द मटीरियल वर्ल्ड, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियस होना मतलब हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन हो जाना। तो ये छोटा कोई वो नहीं है, बहुत ऊंचे स्तर है। तो इसी प्रकार से रूप गोस्वामी विदिग्ध माधव नाम के ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं इस स्थान के बारे में। वो कहते हैं राधा रानी का एक नाम है कुसुमेश्वरी। क्या है? कुसुम पुष्प होता है ना, कुसुम पुष्प के समान एकदम कोमल कुसुमेश्वरी, और उनके ऊपर वो एक पुस्तक लिख रहे थे कुसुमेश्वरी के ऊपर, जो कि बताया गया किस प्रकार से मदन को मोहने वाले कृष्ण और मदन मोहन को मोहने वाली मदन मोहन मोहिनी। राधा रानी ऐसी हैं जो कि कृष्ण को भी अपनी तिरछी निगाह से गिरा डालती है ना। तो आज हम गए थे मोर कुटीर, तो मोर कुटीर के पास में एक स्थान था मानगढ़, दूर से दिख रहा था, लोग पूछ रहे थे ये क्या है, ये क्या है, व्हाइट वाली बिल्डिंग क्या है। तो मानगढ़ जो है वहां पर राधा रानी की मान की लीलाएं होती हैं, मतलब राधा रानी नाराज होकर पहाड़ पे चली जाती हैं और कृष्ण फिर उन्हें मनाने के लिए आते हैं। ऐसे एक बार हुआ, राधा रानी नाराज होकर के चली गई और उसके बाद सभी ललिता और विशाखा को कह दिया कि कृष्ण आने मत देना उनको हमारे पास, बिल्कुल हमसे कहाँ रखना, दूर रखना, बिल्कुल पास नहीं आने चाहिए। कहा ठीक है, अभी कृष्ण तो राधा रानी के बिना कैसे रहेंगे, शक्तिमान शक्ति से अलग रह सकते हैं, तो शक्तिमान को तो शक्ति का स्पर्श करना है, और अभी तो ललिता विशाखा का बहुत तगड़ा पहरा है, कृष्ण कितनी भी कोशिश करे लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप बदला। संसार को प्रकट करने वाले के लिए स्वरूप बदलना क्या मुश्किल है, भगवान ने अपना रूप बदला और एक चूड़ी बेचने वाली बन गए। क्या बन गए? चूड़ी बेचने, और क्या बोलने लगे, चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो, क्या बोलने लगे, चूड़ी होती है ना माताएं पहनती हैं बैंगल्स, तो चूड़ी ले लो ऐसे करके आवाज लगा रहे थे। पर भगवान के मुख से जो भी निकले वो क्या होता है, शास्त्र होता है ना। भगवान के मुंह से ज्ञान निकला तो भगवत गीता बन गई, भगवान के मुंह से संवाद निकले तो भागवत पुराण बन गए। तो भगवान के मुंह से जो निकल जाए वो सुंदर मीठा मधुर लगता है। भगवान के मुख से जब निकला तो राधा रानी कहती हैं ये चूड़ी वाली को बुला के लाओ, मुझे चूड़ियां खरीदनी है ना, मेरा मूड बहुत अपसेट है, मैं मान में हूँ। कहा अच्छा ठीक है, तो बुला के लाए। तो अभी इन्होंने अपने वस्त्र भी बदल लिए थे, उन्होंने गोपी ड्रेस पहना था माता जी जैसा, और श्यामल रंग के थे। तो उनसे पूछा ललिता सखी ने, तुम्हारा नाम क्या है, पहले तो कभी देखा नहीं चूड़ी बेचते इस बरसाना धाम में। कहा मैं ना अभी नई नई आई हूँ शादी होकर के। हाँ नाम क्या है? नाम श्यामल सखी, श्यामल रंग की सखी, श्यामल सखी। हाँ अच्छा अच्छा श्यामल सखी, ठीक है ठीक है, तो चलो राधा रानी ने बुलाया तुमको। कहा यही तो इंतजार था, बुलाए हम चले राधा रानी के पास। तो मानगढ़ में ऊपर लेकर के गए राधा रानी के पास में, तो उन्होंने कहा कि पहना दो चूड़ियां। कहा देखिए जी चूड़ी तब पहनाते हैं जब जो मालिक होता है ना उसका हाथ का नाप हमें लेना पड़ता है, थोड़ा दबाना पड़ता है, दबाएंगे चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से चूड़ी देंगे उनको। तो है ना, राधा रानी बोली नहीं नहीं मैं किसी को अपना हाथ नहीं दूंगी, मैं गुस्से में हूँ, मान में हूँ। तो कृष्ण बोले देखिए पहनान पहनना नहीं है तो हमको क्यों इतना ऊपर बुलाया, हम तो जा रहे थे अपना चूड़ी ले लो करते हुए, आप बुलाए तो हाथ तो देना पड़ेगा। तो भगवान राधा रानी कहती है अच्छा ठीक है ले लो ऐसे करके। तो राधा रानी ने मुंह ऐसे करके हाथ दे दिया और ये ऐसे करके हाथ से स्पर्श करके चूड़ी चढ़ाने लग गए। चूड़ी चढ़ा रहे थे तो हाथ का जैसे कृष्ण का स्पर्श हुआ, राधा रानी कहती है ये चूड़ी वाली के हाथ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा हाथ रोज कोई ना कोई पकड़ता है, रोज ऐसा है कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ता है, बिल्कुल वैसा ही हाथ लग रहा है, इस हाथ में कोई भेद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये हाथ बहुत जाना पहचाना है। तो है ना पूछती है तुम्हारा नाम सच में क्या है, कहा श्यामल सखी। अच्छा तो चूड़ी पहना दो, पहना दी। तुम्हारा रूप भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बड़ा देखा देखा सा है। तो उन्होंने कहा अच्छा पता नहीं मैं तो नई आई हूँ बरसाना में, मेरा रूप आपने कब देख लिया। तो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ गुप्त बात करनी है। अच्छा गुप्त बात करनी, ललिता विशाखा तुम जाओ, ये सखी मुझे बहुत ही प्रिय लग रही है, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। ललिता विशाखा बाहर चले गई, गेट बंद कर दिया। अभी कृष्ण को और क्या चाहिए था मौके के अलावा, बोले अरे वाह राधा रानी अकेली और मैं भी अकेला। तो उन्होंने कहा बोलिए क्या बात करना चाहती है। कहा मैं ये बात करना चाहती हूँ क्या तुम मेरे नाप की नई नई चूड़ियां नए नए डिजाइन की बनाकर डायरेक्ट मुझे लाके पहना सकती, अभी तो तुम बनी बनाई लाई हो, क्या कभी तुम ऐसा कर सकती हो कि मेरे नाप ले जाकर के डिजाइन बनाओ जैसी मेरी इच्छा। कहा हाँ 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 बिल्कुल ऐसा कर। कहा अरे वाह तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मैं बहुत गुस्से में थी लेकिन अभी आनंद का अनुभव हो रहा है, आओ गले लग जाओ। तो यही तो चाहते थे कृष्ण। जैसे ही गले लगाया तो क्या हुआ, गोपी ड्रेस तो पहनी थी लेकिन पीछे क्या डाल रखी थी, बांसुरी, उसको कभी छोड़ते नहीं है। जैसे पकड़ा तो कुछ लगा लकड़ी लकड़ी सी है तो निकाला, बोले अरे अरे ललिता विशाखा ये श्यामल सखी नहीं है, ये तो श्याम है, कृष्ण है, पकड़े गए घनश्याम है ना। तो इस प्रकार से पकड़ लिए जाते हैं भगवान इसी स्थान पे मानगढ़ में और से अनेकों लीला करते हैं। तो बांसुरी एक ऐसी चीज है जिसको भगवान कभी त्यागते नहीं, जानते हैं उसका कारण क्या है। बांसुरी एक ऐसी सखी है, राधा रानी के साथ भी भगवान नाराज होते हैं पर बांसुरी के साथ भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं। बांसुरी को सीधा उठा करके कहाँ लगाते हैं, जिस चीज को राधा रानी और सखियां पूरा दिन इंतजार करती, कब कृष्ण आकर के हमें गले लगाएंगे, हमें अपना मुखारविंद से आकर यहाँ पर ऐसे प्रेम करेंगे और उठा करके अधरामृत अपने अधर का ओठों का अमृत पिलाते हैं, किसको, बांसुरी को। तो बड़ी जेलसी करती हैं गोपियां किससे, बांसुरी से, वेणु से। इसलिए एक भागवत में गीत है जिसका नाम है वेणु गीत, वेणु से निकलने वाला गीत। तो ऐसी जो बांसुरी है वो बांसुरी क्यों इतनी प्रेममयी बन जाती है भगवान के, कई कई जगह जब गोस्वामी ने वृंदावन में भगवान के विग्रहों को ढूंढा तो कहीं राधा रानी साथ में नहीं थी। गोविंद देव प्रकट हुए गोमाला टीला से रूप गोस्वामी को, गोपीनाथ जी प्राप्त हुए मधु पंडित गोस्वामी को यमुना के किनारे, मदन मोहन जी प्राप्त हुए किसको, सनातन गोस्वामी को चौबे परिवार से, जो हमने कल रात को कथा सुनी अद्वैत आचार्य जी के विग्रह। इस प्रकार से अलग अलग विग्रह थे लेकिन इसमें राधा रानी, लेकिन एक चीज थी क्या, बांसुरी, वेणु, ये कभी भी भगवान से अलग नहीं हुई है। तो क्यों भगवान उसको सदा अपने साथ रखते हैं, भगवान कृष्ण का विग्रह है इस बात की पुष्टि करती है कौन, अगर राधा रानी और कृष्ण और बांसुरी ना हो तो मानेंगे राधा कृष्ण आदमी का लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा ये कौन है, राधे श्याम है। राधे श्याम होने का मतलब श्याम के हाथ में बांसुरी के साथ में, ये है भगवान से गोपियां पूछती हैं बांसुरी को सदा अपने साथ क्यों रखते हैं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि बांसुरी ने बहुत कुछ सहा है, इस जीवन के बहुत सारे दुखों को सहा है, बहुत सारे कष्टों को सहा है। देखो लकड़ी के रूप में कितनी बारिश, कितनी गर्मी, कितनी बरसात वो अपने ऊपर झेलती है, उसके बाद तीखे पैने चाकुओं से उसको काटा जाता है, काटने के बाद में गरम गरम लोहे से उसके अंदर छेद किए जाते हैं, इतना कुछ सहन करती है और उसके बाद भी अपने अंदर कुछ भी नहीं रखती है, कुछ होता है खोखली होती है, बिना अहंकार शून्य, अहंकार कुछ नहीं है कि मैं भगवान के अधरामृत पर रहती हूँ, मैं तो हमेशा कृष्ण के साथ रहती हूँ, इस बात का भी घमंड नहीं, क्योंकि जिसको घमंड होता है भगवान उसको त्याग देते हैं। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी को भी भगवान वृंदावन में त्याग करके चले जाते हैं। गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण कहाँ है, तो पता चला कि राधा रानी के साथ कुंज में विहार कर रहे हैं। राधा रानी के मन में भाव आया मैं गोपियों से श्रेष्ठ हूँ, जैसे ही मन में भाव आया कृष्ण राधा रानी को छोड़ करके चले गए। राधा रानी कहती कृष्ण कहाँ है? गोपिया कहती हम तो सोच रहे तुम्हारे साथ है, तुम भी ढूंढ रही हो। कहा हम भी ढूंढ। तो कृष्ण क्यों छोड़ जाते हैं? जिस पल आपके मन में आ गया कि मैं स्पेशल हूं, बस भगवान आपसे आपका गुण छीन लेंगे, आप अवगुण बन जाएगा। तो इसलिए वेणु सिखाती है अहंकार रहित होना। कोई भी गुण हो ये जानना चाहिए कि किसकी कृपा से है, गुरु की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी से लोग पूछते थे आप इतना सारा विश्व परिवर्तन कैसे कर पाए, तो प्रभुपाद जी बोलते थे आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट्स बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ माय गुरुदेव स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ, मैं तो क्या हूँ, नॉर्मल व्यक्ति हूँ। तो इसी प्रकार से हम सब जो भी सेवा करते हैं, जो भी हमारे गुण हैं, कीर्तन कथा सेवा प्रसादम, जो भी इस समय बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं भक्त यात्रा में भी, उनको ये नहीं सोचना चाहिए मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। ये किसके कारण है? कृष्ण। वो जिस दिन चाहेंगे पैरालाइज कर देंगे बॉडी को, क्या कीर्तन करेंगे, क्या कथा करेंगे, क्या कुछ करेंगे, भगवान एक मिनट में अहंकार छीन कर देते हैं। तो या तो हम अपनी इच्छा से छोड़ दें, नहीं तो मृत्यु के समय तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए भगवान कहते गोपियां तुम सीखो तो किससे सीखो? वेणु से सीखो। बिल्कुल खोखली है, अहंकार रहित है, और उसके अंदर जब मैं फूंक मारता हूं तो क्या निकलती है? सुंदर ध्वनि निकलती। लेकिन वेणु को कभी ये नहीं लगता कि मैं सुंदर ध्वनि निकालती हूं, वो जानती है जब मैं कृष्ण के मुख पे लगती हूं तभी मुझसे आवाज। हारमोनियम को कभी घमंड हो जाए मैं तो इतना सुंदर धुन निकालता हूं, अब ये हारमोनियम थोड़ी निकालता है, उसके पीछे कोई व्यक्ति बजाता है तब हारमोनियम से आवाज निकलती। ऐसे ही हमको घमंड हो जाए, अरे हम तो कितना अच्छा बोलते हैं, हम तो कितना अच्छा कथा करते हैं, हम तो कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, हम कितना अच्छा लोगों को कन्विंस करते हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर बैठे परमात्मा मुझको बोलने की शक्ति दे रहे हैं। बोलो। इसीलिए इन लीला स्थलियों पे आकर के बोलने की क्या आवश्यकता है? दो प्रकार की शक्ति है भगवान की, एक है लीला शक्ति और एक है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। तो इसीलिए मेरा हमेशा बहुत ज्यादा फोकस रहता है वृंदावन यात्राओं में कथा करने पे, क्योंकि कथा दर्शन से अधिक प्यूरिफाइंग है। हम यहाँ पर नोटिस करने नहीं आए, हमने कितने कितने स्थान घूमे, जैसे अभी एक 84 कोस परिक्रमा यात्रा चल रही थी, तो भक्त बता रहे थे हम जाते हैं दर्शन कराते हैं वैन में बिठाते हैं फिर अगले दर्शन पे ले जाते हैं, परिक्रमा करवा रहे हैं, क्या ये परिक्रमा फल देगी कुछ? वो परिक्रमा तभी फल देती है जब कान में कुछ जाए, हृदय में परिवर्तन हो। तो इसलिए कथा कृष्ण कथा वर्णन शक्ति प्राप्त होती है जब कृष्ण लीला स्थली शक्ति पर जाकर के हम कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं। तो ये बोलने वाले को भी शुद्धिकरण करती है, सुनने वाले को भी करती है। तो तीन लोगों को कथा शुद्ध करती है, पहला करती है बोलने वाले को, पहला करती है
बोलने
वाले, कई लोग सो रहे हैं, पहला करती है
बोलने वाले,
दूसरा करती है
सुनने वाले को,
और तीसरा करती है हाँ प्रश्न पूछने वाले को, तीसरा करती है। तो इस कथा के बाद में आपको हमसे क्या पूछने हैं? प्रश्न पूछने वाले को तीसरे नंबर पर शुद्ध करती है, पर उसको भी करती है। तो इस प्रकार से कथा तीनों लोगों को शुद्ध करती है, और चौथा एक व्यक्ति को और शुद्ध करती है। कुछ ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में भाव हो कथा सुनने का, परंतु बेचारा किसी कारणवश शारीरिक कष्ट के कारण नहीं सुन पाए, तो उसको भी शुद्ध करती है, उसके मन में भाव था। पर चौथी कैटेगरी की शुद्धिकरण है, पहला है बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा पूछने वाला। इसलिए पूछने की बहुत महिमा है, हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण की जो नित्य लीला है, वो लीला यहाँ भी चल रही है। आप में से कितने लोगों ने राधा प्रेम बिहारी का दर्शन किया अभी सरोवर में? किया? किसी को हुआ नहीं? हमें तो लग रहा होगा दो बच्चे नहा रहे हैं और गंदा सा पानी है, या फिर हरा हरा पानी है, हवा तो ठीक ठाक है पर जमीन गंदी है, गर्म है। यहाँ पर राधा प्रेम बिहारी रोज बैठते हैं, रोज नित्य लीला। वेणु बाजे सांझ सकाले, आजो जहार कदम्ब तले, वेणु बाजे साज सकाले, जाते नित लीला करे अमार मदन मोहन, जाते नित लीला करे अमार मदन मोहन। मदन मोहन प्रेम बिहारी यहाँ रोज लीला करते हैं। तो यो लीला यहाँ पर हुई थी, एक बार राधा रानी कृष्ण के जंघा पर मतलब लैप इसके ऊपर बैठी हुई थी, और तभी भगवान के हाथ में एक पुष्प था जो वो राधा रानी को देना चाहते थे। जैसे आपने देखा लक्ष्मी नरसिंहा में लक्ष्मी कहाँ बैठती है, नरसिंह भगवान की जंघा पे बैठती है। तो अब इस फोटो को देख करके कामी व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा गलत गलत ख्वाब रच सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि ये बहुत ही प्रेम का स्तर है, काम का स्तर नहीं है। तो लोहे में और सोने के अंदर जितना फर्क है उतना ही काम में और प्रेम में फर्क है। तो यहाँ पर बिठा रखा था, हाथ में उनके लोटस कमल का फूल था और कृष्ण राधा रानी को देना चाह रहे थे, तभी एक मधु, मधु होता है ना क्या, भौरा, मधु आ गया और कैसी आवाज होती है भौरे की, ऐसे। अब राधा रानी डरने लगी भौरे को देख करके, वो आ रहा था कमल का, कमल के पुष्प से नेक्टर, हाँ, पराग लेने के लिए, उसका खुशबू और उसका रस लेने के लिए। परंतु उन्होंने कहा कि हट, राधा रानी कहती इसको भगाओ, कृष्ण इसको हटाओ, ये हमारी लीला में बीच में पड़ रहा है। इसीलिए भोरे की इस नंद गांव में बहुत इंपोर्टेंस है। अभी प्रभु जी मुझे दिखा रहे थे, देखिए एक स्थान, उस स्थान है भ्रमर गीत प्रकट स्थली, जहां पर भ्रमर गीत उत्पन्न हुआ, मतलब भोरे का गीत उत्पन्न हो गया। तो भ्रमर गीत उत्पन्न स्थली जो है, ऐसे भौरे की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी भगवान की नित्य लीलाओं का एक बहुत ही बड़ा पार्षद है। तो वो आया और मधुमंगल पीछे बैठ के क्या खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, हमेशा खाते रहते हैं ना ये लेटे मधुमंगल, हमेशा लड्डू खाते रहते मधुमंगल। तो मधुमंगल लड्डू खा रहे थे, तो इतने में कृष्ण चिल्लाते हैं, मधुमंगल इस मधु को यहां से भगाओ, ये हमारी लीला में डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो वृंदा महारानी, ललिता सखी, विशाखा, ये सब मिलकर के कृष्ण की लीलाएं चाहती यही है। ललिता विशाखा का एक ही कर्तव्य है, जैसे तैसे करके राधा और कृष्ण मिल जाएं, बस ये उनका रोज का प्लान है। आज कैसे मिलाना है, आज कैसे मिलाना है ना। इसीलिए हमारे जो गुरु अष्टकम है उसमें हम एक लाइन गाते हैं, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाएं करने में गुरुदेव सदा ही निमग्न रहते हैं। वो कौन सी लाइन है, निकुंज यो न रतिकेला से धाये यायालि भीर योक्तिरा पेक्षणीया तत्रादि दाक्षदति वल्लभस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निकुंज योनो रतिकेला सिद्धये, जिस प्रकार से ललिता विशाखा हमेशा इसमें रहती हैं, निकुंज में राधा कृष्ण की नित्य लीला कैसे हो, तो सच्चा गुरु वही है जो भक्तों को इन लीलाओं के अंदर निमग्न करने में, उनके मन को भगवान की इन लीलाओं में निमग्न करने में, क्या करने में, एंगेज करने में लगा दे, दैट इज अ रियल स्पिरिचुअल टीचर, सही मायने में वही है। तो इस प्रकार से निकुंज योना रतिकेला सिद्धये, तो यहाँ पर वर्णन है। तो इस प्रकार से जब मधुमंगल भगाने लगे तो कहते हैं हट जा हट जा, लड्डू दिखा करके कहते हैं ये खा ले ये खा ले। तो भौरा मीठा देखकर चला गया और मधुमंगल उसको लेके उस पार चले गए बाहर, और यहाँ इसी सरोवर के किनारे बैठे थे राधा कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं बस इतना, क्या कहते हैं, राधा रानी आंखें खोलो, मधु चला गया। कौन चला गया, मधु चला गया। तो कृष्ण का भी एक नाम क्या है, मधुसूदन। तो उनको क्या लगा, बैठी कहाँ है, कृष्ण की गोद में, और वो क्या कह रहे हैं, मधु चला गया। लेकिन इसको कहते हैं प्रेम वैचित्य भाव, क्या कहते हैं, ये बहुत ही ऊंचा स्तर का भाव है। जब मैं जिस स्थान पे हूं उस स्थान को ही भूल जाता हूं, और कभी कभी ऐसा होता है मैं जिस स्थान पे नहीं हूं उसका स्मरण करता हूं। तो प्रेम वैचित्य भाव है, मैं जिसके साथ में हूं मैं उसको ही भूल जाता हूं, कहता हूं कि तुम क्यों नहीं हो मेरी लाइफ में और मैं उसी के साथ में हूं। जो प्रेम वैचित्य भाव, जिसकी चर्चा भक्ति रत्नाकर में रूप गोस्वामी ने की है और हमारे आचार्यों ने उसके बारे में वर्णन किया है, कि प्रेमिका प्रेमिका के संग में भी वियोग को सोच करके आंसू निकल जाते हैं, ऐसे इसको प्रेम वैचित्य भाव कहते हैं। और वो कहने लगी, जोर जोर से राधा रानी रोने लग गई, कहती हैं ओ अब कृष्ण कैसे मेरे बालों को क्या करेंगे, कंघी करेंगे, और कब वो मेरे बालों में पुष्प, वैजंती माला के पुष्प, वसंती फूलों को कैसे सजाएंगे, चंपक फूलों से कैसे मेरा श्रृंगार करेंगे। ऐसी भावना राधा रानी के मन में उत्पन्न हुई और रोने लगी, ओ कृष्ण तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले। और कृष्ण क्या कहते हैं, राधा रानी उठो उठो, ए राधे हे राधे उठो उठो, सो क्यों रही हो, भक्त भी सो रहे हैं, राधा रानी भी ऐसे आंखें नहीं खोल रही। उठो उठो, सो मत, रो मत, उठो उठो, मैं यही हूँ। तो है ना, लेकिन राधा रानी ने, अब क्या हुआ, पहले था वियोग, अब क्या हो गया, संयोग। वियोग में रोना आपने कभी देखा है, एहसास किया है, बहुत ऊंचा स्तर है। जब हम अलग होते हैं तो हमें लगता है कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, जब आ जाते हैं तो लगता है कि बस इंतजार खत्म, और उसको सोच करके रोना निकल जाता है। तो प्रेम विचित्र भाव में अलग अलग थे राधा कृष्ण, लेकिन जब कृष्ण ने कहा राधे उठो, राधे उठो, तो राधा और कृष्ण को क्या लगा, राधा रानी को लगा कृष्ण तो आ गए, और आ गए तो मतलब खुशी से आंसू निकलने लग गए, और उनको रोता हुआ देखकर कृष्ण भी रोने लग गए, और राधा और कृष्ण दोनों रोने लगे। और रोते रोते, क्योंकि भगवान का शरीर कैसा है, मैंने सुबह बताया था, कैसा है, सच्चिदानंद। भगवान के शरीर से जो कुछ निकलता है वो सच्चिदानंद है, वो हमेशा एटर्नल बना रहता है। 5000 साल पहले भगवान की आंखों से क्या निकले, आंसू, और आंसुओं से किसके आंसू थे, प्रेम के आंसू। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम, काम वासना नहीं है, लेश मात्र भी, लस्टी डिजायर्स नहीं है, इसके अंदर क्या है, पूर्ण शक्ति, शक्तिमान का वियोग और संयोग। तो वो इस प्रकार से प्रेम के जो आंसू निकले उससे क्या बन गया, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर लीला स्थली की। ये प्रेम सरोवर बहुत ही ऊंचा स्थान, इसीलिए इसका आचमन करने मात्र से व्यक्ति को क्या प्राप्त हो सकता है, कृष्ण प्रेम। परंतु भाव होना चाहिए, राधा कृष्ण व्रजवासियों के प्रति कोई भी हमारे से अपराध ना हो जाए, बहुत ही विनम्रता की भावना से, ये नहीं कि पैर डाल लें सरोवर में, है ना, कपड़े धोले सरोवर में, ये प्रेम सरोवर है। गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जिस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन लेके चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं कृष्ण द्वापर युग में 5000 साल पहले अपने आंसुओं को प्रदान करके गए, और ये सच्चिदानंद स्वरूप में आज तक विराजमान है वो आंसू। तो इनको अगर हम पान करते हैं मुंह के अंदर या सिर पे डालते हैं, तो हमें भी राधा कृष्ण का नित्य लीलाओं के अंदर प्रवेश करने का मौका मिलता है। तो आशा करते हैं आप सब लोग बड़े प्रेम से इस सरोवर में जाएंगे, और क्या करेंगे, डुबकी डाल मारेंगे, और फिर स्नान करेंगे, कपड़े धोएंगे, और फिर आएंगे, है ना, क्या करेंगे, चप्पलें नहीं धोनी, कुछ नहीं करना, आचमन करना, ठीक है। तो अभी हम